Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse Number 28. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 10 विभूति योग, श्लोक संख्या 28। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। आयुधानाम् अहम् वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शब्दार्थ आयुधानाम यानी हथियारों में, अहम मैं हूँ, वज्रम यानी वज्र, धेनु नाम यानी गायों में अस्मि मैं हूँ, कामधुक सुरभि गाय, प्रजनः यानी संतान उत्पत्ति का कारण च तथा अस्मि यानी हूँ कंदर्पः कामदेव, सर्पाणाम यानी सर्पों में अस्मि मैं हूँ वासुकी वासुकी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वज्र सचमुच अत्यंत ही बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। चैप्टर 10 भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में किस प्रकार अपनी विभूतियों के द्वारा समाये हुए हैं, उसके विषय में हमें बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी आपको सुंदर दिख रहा है, जो कुछ भी बलवान दिख रहा है, जो कुछ भी ग्रेटेस्ट दिख रहा है, वो वास्तव में मेरी विभूति है और कुछ नहीं, मेरी अनंत तेज का एक छोटा सा स्पार्क है। और आज भगवान बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान कहते हैं आयुधानाम अहम वज्रम। वज्र वह हथियार है जो इंद्र देवता यूज करते हैं। जब इंद्र किसी भी असुर के साथ, हम जानते हैं देवताओं और असुरों का तो युद्ध होता रहता है, और उस समय अगर असुर विजयी हो जाते हैं तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि असुरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सब जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो और इस तरह से वो देवताओं यहाँ भौतिक जगत में तो यह कलह करते रहते हैं और देवताओं के स्वर्ग लोक में भी जाते हैं ताकि स्वर्ग पर आक्रमण करके खुद विजयी करके वहाँ स्वर्ग के राजा बनने का प्रयास करते हैं। तो कभी एक बार क्या हुआ, स्वर्ग के राजा इंद्र और जो ये जो दूसरे जो असुर हैं उनका एक बहुत ही घमासान युद्ध हो गया। उसमें क्या कि इंद्र जो भी हथियार उठाते थे ना तो हथियार टूट जाता था, मतलब उस हथियार के साथ असुरों का वो नाश नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए कि कुछ कोई ऐसा हथियार हो जो कि मेरी सहायता करे इन असुरों के साथ विजयी होने में। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि अभी क्योंकि असुरों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है तो तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार की आवश्यकता होगी। तो इंद्र ने कहा मैं वो हथियार कैसे बनाऊं, मेरे तो हथियार ही टूट जाते हैं जल्दी। तो इंद्र को राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता थी। तो जो दधीची ऋषि बहुत तपस्या करते थे उनको जब पता चला तो उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया, बोला मैं अपनी हड्डियों से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी तो उनकी हस्तियों से जो उनकी हड्डियां है ना उनसे ये वज्र बना है और ये ऐसा अचूक अस्त्र है कि कभी भी जब इंद्र के पास होता है तो इंद्र किसी भी असुर के साथ युद्ध करता तो वो सदैव उसकी विजय होती। इसीलिए भगवान कहते हैं आयुधानाम अहम वज्र, इसका मतलब है हर वो अस्त्र जिसके कारण किसी को विजय होती है वो भगवान के ही एक अंश है, उसके अंदर भी भगवान का एक पराक्रम है, भगवान की एक विभूति है जिसके वास्तव में हम जो भी विजय जिस भी जहां भी हम सक्सेस प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि क्योंकि भगवान ने हमें पावर दिया है, भगवान ने हमें शक्ति दी है जिसके कारण हम विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान कहते हैं आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक। धेनुनाम कहते हैं गौओं को, इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं गौ जो साधारण होती है उसके अंदर भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ का गोबर, गौ का मूत्र सब बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं और जो इन गौओं में जो सबसे महान गौ है वो है कामधुक अर्थात सुरभि माता। इस भौतिक जगत में जो गौ होती है वो हर समय उसमें से दूध नहीं निकाला जाता, जो ग्वाले हैं उन्हें पता होता है दिन में 2 दफा या इस तरह संध्या के टाइम पर या फिर उनको धोने का एक पर्टिकुलर समय होता है, हर समय दूध नहीं निकाला जा सकता और उसके लिए भी ऐसे नहीं कि बस दूध का टाइम हो गया और निकालो, नहीं, उसके लिए गौ के हृदय में पहले स्नेह उत्पन्न करने के लिए क्या करना होता है, जो बछड़ा होता है उसको खोल कर ग्वाला गौ के स्तन तक लेके आता है, फिर जिसके कारण गौ के हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है और फिर गौ अपना पूरा दूध जो है वो स्तनों में छोड़ती है, फिर ग्वाला क्या करता है गौ का मुंह उस तरफ कर देता है, मुख दूसरी तरफ कर देता है, उसके सामने चारा इत्यादि घास रख देता है। गौ समझती है कि मेरा पुत्र मेरा बच्चा जो है वो दूध पी रहा है लेकिन ग्वाला दूध दो रहा है। ये जो दूध दोहते होंगे उनको ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन ये सुरभि जो गौ है जो काम दुख है वो इच्छा पूरी करने वाली है, जिस समय भी दूध इत्यादि जो भी वस्तु चाहिए होती है काम इच्छा जो भी वस्तु की होती है उसमें से निकलता है। तो ये बहुत ही भव्य बहुत ही गौ है और कृष्ण तो वैसे भी गौओं को बहुत स्नेह करते हैं, गौ ब्राह्मण हिता है से भगवान श्री कृष्ण गौ और ब्राह्मणों से बहुत प्यार करते हैं। जब इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनके पिताजी नंद महाराज के पास लाखों गौ होती हैं और भगवान उनको चराने के लिए जाते हैं, यही कार्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय लगता है। भगवान रोज जब छोटे होते हैं तभी भी यशोदा मैया से जिद करते हैं कि मैया मुझे गौ को चराने जाना है, मुझे गौ की सेवा करनी है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और भगवान अपने गौलोक वृंदावन धाम में भी उनके पास बहुत सारी गौ हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है, वो कामधुक हैं और भगवान उन्हीं को चराने के लिए जाते हैं। इस भौतिक जगत में जो भगवान लीला करते हैं वही लीला वो नित्य अपने गौलोक वृंदावन धाम में करते हैं, वो गौ चराने के लिए जाते हैं, सब गोपियां उनका उसी रास्ते की ओर देख कर निहार निहार कर प्रतीक्षा कर रही होती हैं। और जब भगवान शाम को आते हैं तब सब उनसे प्रेम से मिलती हैं। ये अद्भुत लीलाएं भगवान के गोलोक धाम में सदैव चलती रहती हैं। भगवान कहते हैं गौओं में मैं सुरभि हूँ और आगे कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्प। प्रजनन का मतलब है संतान उत्पत्ति का कारण। वास्तव में भक्तों, संतान उत्पत्ति का कारण है काम। काम ही संतान उत्पत्ति का कारण बनता है। लेकिन यदि यह काम वासना संतान उत्पत्ति करने के बाद अलावा केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो ये अपराध होता है। इसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन यही काम यदि संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो इस प्रजनन को कंदर्प कहा जाता है, अर्थात बहुत सुंदर। कंदर्प जो है वो बहुत बहुत भगवान ने जितनी भी सुंदर विभूतियां बनाई इस भौतिक जगत में, उनमें सबसे ज्यादा सुंदर कंदर्प को, जो कामदेव हैं, उनको बहुत सुंदर बनाया। लेकिन वो कितना भी सुंदर हो, भगवान की सुंदरता के समक्ष उसकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि आपकी शोभा, आपका सौंदर्य, आप तो इतने सुंदर हो कृष्ण कि आपकी सुंदरता को देखकर एक नहीं, दो नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कामदेव भी यदि आपके समक्ष खड़े हो जाए तो उनकी सुंदरता फीकी लगने लगेगी। आपकी सुंदरता इतनी, आप इतने ज्यादा सुंदर हो, तो वो जो कामदेव है उनका कार्य है जीवों के हृदय में काम इच्छा उत्पन्न करना, जिसके कारण संतान उत्पन्न हो सके। लेकिन यदि विवाह से पहले या मतलब विवाह के बजाय जीव कोई काम इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। भगवान सिर्फ उसी काम को पवित्र कहते हैं। भगवान ने पहले भी कहा 7.11 में भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, हे भरत श्रेष्ठ, वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी जो धर्म के अनुसार है। धर्म यानी जब कोई पति अपनी धर्म पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए काम मतलब यह कार्य करता है तो वो भगवान कहते हैं, उसको भगवान कितना पवित्र बताते हैं। भगवान कहते हैं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर, वो साक्षात मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जीव उत्पन्न हो, क्योंकि जीवों ने स्वयं इस भौतिक जगत में प्राप्त उत्पन्न होने के लिए इच्छा की है। तो यदि धर्म के अनुसार वो उत्पन्न होंगे तो वो अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जा सकेंगे। तो यदि कोई धर्म के अनुसार काम को करता है तो वो साक्षात मेरा स्वरूप है। यहाँ पर भगवान यही कहते हैं, प्रजनस्यास्मि कंदर्प, यानी संतान उत्पत्ति करने के देवता, जो प्रेम का देवता है कामदेव, वो मैं हूँ। भागवतम के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, गुरु न सस्यात, स्वजनम न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, देवम न तस्यात, न पतिश्च स्यात, न मोचयेत यः समुपैति मृत्युम्। यानी वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, स्वजना न सस्यात, वह मित्र कहलाने के योग्य नहीं है, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, वो पुरुष पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो स्त्री माता कहलाने के योग्य नहीं है, देवम न तस्यात, पतिश्च सस्यात, वो देवता भी देवता बनने के योग्य नहीं है, वो पति पति करने बनने के योग्य नहीं है। कौन? जो क्या नहीं करता, न मोचयेत यः समुपैत मृत्युः, न मोचयेत, न मतलब नहीं, मोचयेत मतलब उभार सकता है, न उसको उभार नहीं सकता, किससे, समुपैति मृत्युम, समुपैति मतलब जीव इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, मृत्यु के मार्ग पर सदैव उसको कष्ट भोगना पड़ता है, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में फंसा रहता है। तो जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से उभार नहीं सकता है, उसे न गुरु बनने का, न ही पिता बनने का, न पत्नी बनने का, न माता बनने का ना ही स्वजन बनने का अधिकार है। जीव यदि कोई कर्तव्य जीव का कोई है तो वह यह है कि वो अपने आश्रित को इस तरह से ज्ञान दे कि वो अब आ गया है तो दोबारा इस भौतिक जगत में न आना पड़े। एक माता का यह कर्तव्य है, एक पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने अपने संतान को ऐसी शिक्षा दे कि वो भगवत भक्ति करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। यदि वो ये नहीं कर सकता तो शास्त्र ने कह दिया कि उसे तो माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं है। वास्तव में ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हम इस मनुष्य जन्म को कितना सस्ता ले रहे हैं, हम कितना समय व्यर्थ बिता रहे होते हैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, अपने संतान को कितना प्रेरित करते हैं भौतिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, कितना उसके ऊपर हम अंकुश लगाते कि भाई नहीं हरू भरू आपको स्कूल जाना है, आपको भौतिक एजुकेशन प्राप्त करने, लेकिन भक्ति के लिए नहीं करते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, कि ये जो भगवान इह, ये जो भागवत धर्म है, ये जो भगवान की भक्ति का जो कार्य है वो तो कौमार आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है उसे तो छोटी सी उम्र में, कौमार आचरित, कौमार कौन सा होता है, 5 साल से लेकर 10 साल वही समय है जब आप अपने बच्चों को, अपनी संतान को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करो, क्योंकि उसके बाद तो उसकी बुद्धि भगवान की भक्ति को अडॉप्ट कर नहीं सकेगी, क्योंकि आज का वातावरण इतना घिनौना हो गया है कि जैसे जैसे संतान, जैसे जैसे बच्चा बालक बड़ा होता जाता है उसके अंदर भौतिक विकार इतने घुस जाते हैं, फिर भक्ति करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बचपन से ही कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। तो प्रश्न उठता है कि बचपन से क्यों, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मिला है, इसमें एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तदर्थम ध्रुव अर्थदम, ये बहुत कठिनाई से मिला तो है, अनेक अनेक जन्मों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद यह मनुष्य जन्म मिला तो है, परंतु ध्रुव अर्थ। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि किसी भी समय आपसे लिया जा सकता है, कोई बहुत ही कम समय के लिए आपको ये मनुष्य जन्म लिया है, कोई ये जो 50-60 साल हमें यहाँ पर कलयुग में अभी समय मिलता है, ये कोई इतना ज्यादा समय नहीं है कि उसमें से भी हम 50% तो खत्म कर चुके हैं और उसके बाद भी हम सोचते हैं कि कभी जाके भक्ति में सीरियस होंगे, कब होंगे। ये जन्म ऐसे जैसे मुट्ठी से रेत कैसे निकलती है, ऐसे धीरे धीरे करके हमारे हाथ से हमारी आयु समाप्त हो रही होती है। जैसे अगर आपको कोई एक कार मिले और आपको कहा जाए कि ये कार आपके पास एक हफ्ता रहेगी, आपको एक कार मिली हो और उसको उसके द्वारा आपको यात्रा करने के लिए बोला हो कि भाई आप इस कार के द्वारा वृंदावन की यात्रा कर सकते हो, लेकिन ये कार आपको केवल एक हफ्ते के लिए मिली है, तो हम क्या करेंगे? जितना फास्ट पॉसिबल होगा उतना फास्ट हम वृंदावन की यात्रा करेंगे, क्योंकि अगर एक हफ्ता समाप्त हो गया तो एक हफ्ते के बाद तो हमसे कार ले ली जाएगी, चाहे हम कहीं पर भी पहुंचे होंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि जल्दी से जल्दी हम अपने गोल तक पहुंचे। इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म ही एकमात्र वो वाहन है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अगर इस मनुष्य जन्म में केवल आहार निद्रा बाई मैथुन में ही समय बिताते रहे और भगवान की प्राप्ति के लिए सीरियस नहीं हुए, और भगवान ने यदि देख लिया कि मनुष्य जन्म में भी यह पशुओं के जैसे कार्य करता है, तो फिर इसे वही पशुओं जैसा ही शरीर दे दिया जाए, फिर 84 लाख योनियों को भटकने के बाद पुनः मनुष्य जन्म कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसी जन्म में हमें सीरियस होना है, ये नहीं सोचना है कि चलो थोड़ी थोड़ी भक्ति अभी कर रहे हैं, आगे अभी हमें अच्छा जन्म मिलेगा, उसके बाद हम दूसरा, कोई गारंटी नहीं है दूसरे जन्म की। महाराजा भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर हिरण बनना पड़ा। राजा इंद्रद्युम्न ने इतनी तपस्या की, फिर हाथी बनना पड़ा। हमारा तो कुछ भरोसा नहीं, हमें अपने ऊपर भी, अपनी भक्ति के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है, अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई संयम नहीं है। हमें बहुत बहुत सीरियसली और सिंसियरली अपनी साधना करनी है ताकि हम इसी जन्म में ही भगवान को प्राप्त करें। तो ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं कि वो अपनी संतान को कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करेंगे, ये न के न प्रकारे उनसे कृष्ण भक्ति करवाएंगे। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। माता पिता बनने से पहले हमको यह निश्चय करना है कि हम अब इस लायक हैं कि हम अपनी संतान को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तभी संतान उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहा जाता है कि भगवान, सॉरी, कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है, अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि आप यह निश्चय करके संतान उत्पन्न करते हो कि हम इसको भक्त बनाएंगे, तो फिर आपको संतान उत्पन्न करने की खुली छूट है। भले 100 संतान उत्पन्न करो, लेकिन जब तक आप इस योग्य नहीं बनते हो तब तक आपको संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आपको कोई इंद्र तृप्ति के लिए काम वासना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप अपने बच्चों को, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, कृष्ण भक्ति में प्रेरित नहीं कर सकते, तो वो संतान इस भौतिक जगत में आकर तो और भी अपने लिए और संसार के लिए कष्ट का कारण बनेगी। इससे बेहतर ऐसा संतान उत्पन्न ही नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले समस्त जीवों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में समस्त शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें किस तरह से इस भौतिक जगत में अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये कर्तव्य है। आज हमें कितना हैरानगी की बात लगती है कि ब्रह्मचर्य में सारे शास्त्रों को, छोटे बच्चे अभी हम स्टडी भी करें और ये शास्त्र भी सारे पढ़े। हाँ, ये समय ही शास्त्र पढ़ने के लिए है। तो सारे शास्त्रों का ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही किसी को विवाह करने की परमिशन देनी चाहिए। जब उसे यह ज्ञान हो जाए कि मैं विवाह क्यों कर रहा हूं और मैं संतान क्यों उत्पन्न करूंगा, क्योंकि मुझे अपने द्वारा और अपनी संतान के द्वारा संसार का कल्याण करना है, तभी उसको विवाह करना चाहिए। और उसी के बाद जो संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है, भगवान कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, आगे कहते हैं सर्पाणामस्मि वासुकी। सर्प कहते हैं उस सर्प को, सर्प और नाग दो अलग अलग होते हैं। नाग जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे फण होते हैं, किसी के अंदर 2 फण होते हैं, किसी के अंदर 4 होते हैं, किसी के अंदर 10 होते हैं, और जो अनंत शेष है ना, जिसके ऊपर भगवान जिसको शैया बनाकर भगवान उसके ऊपर बैठते हैं, जो बलराम जी का प्रतीक है, वो उनके तो 1000 मुख हैं। परंतु यहाँ पर भगवान ने कहा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सर्प वो होता है जिसका सिर्फ एक ही मुख होता है, और ऐसे एक ही मुख वाले सर्पों में सबसे ज्यादा महान है वासुकी। ये वही सर्प है जो कल हम पढ़ रहे थे ना, मंदराचल पर्वत पे वासुकी की डोरी बनाई थी। तो ये वासुकी जो है, भगवान कहते हैं सारे सर्पों में क्योंकि सबसे ज्यादा महान वासुकी है, तो वो मेरा प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि भगवान संसार की हर एक वस्तु में महान जो है, उन हर एक कैटेगरी में जो महान है, उसका उदाहरण देके कहते हैं कि ये मेरा अंश है, अर्थात इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है। भगवान ने हर एक वस्तु को चुन चुन कर उठाया है कि घोड़ों में मैं उच्चय शर्मा हूँ, हाथियों में मैं गजेंद्र, एरावत, मनुष्यों में मैं राजा हूँ और गायों में सुरभि हूँ और हथियारों में शस्त्रों में वज्र हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। यानी कि भगवान जानते हैं कि मनुष्य जो है वो डायरेक्ट से मुझे याद नहीं कर सकेंगे, उनके लिए फिर भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौनते सदा तद भाव भाविता, कि जिस जिस वस्तु का स्मरण करोगे ना अंत समय में वही वस्तु आपको काम, वही वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, भगवान बताते हैं कि हर एक वस्तु को देखकर आपको मुझे याद करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे याद करने की प्रैक्टिस करो कि ये सुंदर है तो ये भगवान की विभूति इसलिए सुंदर है, क्योंकि कृष्ण का अंश है इसलिए सुंदर है, इसके अंदर ज्ञान है तो ये इसीलिए है क्योंकि कृष्ण का अंश है, इसके अंदर कोई भी क्वालिटी है तो ये कृष्ण की क्वालिटी है इसीलिए वो मुझे अट्रैक्ट करे। यदि ये भाव हो जाए ना तो मनुष्य कभी भी अपने जीवन को सफल किए बगैर नहीं रह सकता, सिद्धि उसके हाथ में आ जाएगी यदि हर एक वस्तु को देखकर कृष्ण याद आ जाए। यदि महाराजा भरत को उस हिरण में कृष्ण याद आ गया होता, यदि वो ये सोचता कि क्योंकि कृष्ण ने मुझे निमित्त बनाया है, ये कृष्ण का ही एक अंश है, कृष्ण की ही इच्छा है कि मैं इसकी सुरक्षा करूं, तो फिर इस लीला का, ये जो महाराजा भरत की जो लीला है उसका कोई अलग स्वरूप होता। इसलिए आज अगर हम अपनी संतान को प्रेम करते हैं, अपने पति को प्रेम करते हैं, अपने घर में कोई कार्य करते हैं, यदि उसमें हम कृष्ण को इंक्लूड कर देते हैं, यदि केंद्र बिंदु कृष्ण होता है कि क्योंकि कृष्ण ने यह सब कुछ दिया है और मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य करता हूँ, तो फिर हम समस्त कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। तो इसलिए भगवान हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हर एक महान वस्तु को देखकर आप मुझे याद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।